ओम शांति। जिसकी पर्स में जेब में मास्क पड़ा है वो पहन ले, और जिन्होंने पहना है गले में नहीं पहनना है मास्क, गले की माला नहीं है, ये नाक और मुंह ढकने का है। इंडिया में अभी भी कोरोना बढ़ता जा रहा है, खास यूपी दिल्ली तरफ बहुत है। तो हमें डबल लाइट रहना है, डबल लाइट रहेंगे तो उड़ते रहेंगे, और जितना उड़ते रहेंगे, विघ्न है नीचे रह जाएंगे। विघ्नों को कोर क्रॉस करना सहज हो जाएगा। भारी हम तब होते हैं जब देहभान में है, और ये हमारी आधा कल्प की आदत है देहभान में रहने की। अभी देही अभिमानी बनना है, और शरीर को बिल्कुल भूल जाना है। शरीर को भूलने से शरीर के संबंधी मित्र सब भूल जाएंगे। और बाबा की याद में रहने से ममत्व टूटता जाएगा, क्योंकि ममत्व हमें नीचे खींच आता है। दूसरा बाबा कहते हैं, अपने को निमित्त समझो। बाबा करावनहार है, मैं करनहार हूं। हम बाबा के कार्य के लिए निमित्त है तो जिम्मेवारी बाबा की हो जाती है। जब बाबा को जिम्मेवारी दे देंगे तो हम हल्के हो जाए। मेरे बच्चे, मेरा परिवार जब समझते हैं तो चिंता हो जाती है, भारी हो जाते हैं। अभी मेरे को तेरे में बदलना है। गुजराती में कहते हैं, हूँ करूँ ए अज्ञानता सकट नो भार जेम स्वानता में। कुत्ता चलता है गाड़ी के नीचे, बैल गाड़ी को चलाता है, और कुत्ता समझता मैं चलाता हूँ। ऐसे हम भी परिवार को समझते हैं हम चलाते हैं तो भारी हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा की जिम्मेवारी है, मैं निमित्त हूं। आप लोगों ने देखा होगा दादी प्रकाश में कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी, 120 देशों की सेवा, और भारत में भी 4000 सेवा केंद्र। और इतनी हल्की थी, तकिए पर सिर डालती थी, रात को एक मिनट में सो जाती थी। हम दादी को पूछते थे, दादी आप इतनी हल्की क्यों हैं? हर्षित रहती है हमेशा। दादी कहती है, बाबा की जिम्मेवारी है ना, तो रोज रात को बाबा को थैंक यू करके सोती थी कि थैंक यू बाबा, आज का दिन ठीक हो गया। एक बारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी यहाँ और दोनों दादियां फ्रैक्चर हुआ था और कारोबार जैसे कि वैसा चला, तो लोग जो आने वाले थे इतना उनको आश्चर्य हुआ कि ये देखो दोनों दादियां बीमार है और कारोबार तो ऐसे ही चलता है। तो निमित्त समझने से हल्का रहता है। दूसरा बोझा होता है हमारे पाप कर्मों का, क्योंकि द्वापर से लेकर हम पाप करते रहे और अभी भी जाने अनजाने संस्कारों के वश पाप कर्म होता रहता है। अभी अभी बाबा ने मुरली में बताया कि किसी की बुराई करो, बुराई सुनो, ये भी पाप कर्म हो जाता और गुस्सा तो आ जाता है, थोड़ा कुछ ममत्व भी रहता है। तो इसलिए जहां विकार है वहां पाप होगा। जब तक निर्विकारी बने तब तक पाप होता रहता है। तो इसलिए पापों का बोझा हल्का करने के लिए हमें क्या करना है? पापों का बोझा कैसे खत्म होगा? ज्वालामुखी योग, बीज रूप स्थिति योग, उससे हम निर्विकारी भी बनेंगे और पिछला पाप भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा बीज रूप स्थिति योग के लिए हमें खुद बिंदु बनना, बिंदु को याद करना, याद की लगन में मगन हो जाना है। एकांत प्रिय बनना। क्या होता है नहीं तो, जैसे भी हम फ्री होते हैं क्या करते हैं? या तो फोन उठाते हैं या टीवी चलाते हैं। आजकल तो टीवी चलता ही रहता है घरों में। और आजकल तो फोन के पैसे लगते हैं, पर व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया, उसमें नहीं लगते। तो मैं जब न्यूजीलैंड में थी 76 में, तो न्यूजीलैंड में सब नवसारी के आसपास के लोग थे, 20 किलोमीटर रेडियस के सब लोग वहां, तो सब एक दो को जानते। तो माता, उस समय फ्री फोन था, तो जैसे भी माताएं फ्री होती है फोन लगाएंगी, क्या है, कैसे है, क्या खाया, क्या पिया, कौन मरा, कौन जन्मा, किसकी शादी हुई, कौन भाग गया, सारी परपंच शुरू हो जाते, जर्मी बाबा कहते हैं शुरू हो जाती। और अभी सोशल मीडिया सर्विस के बहाने भी कई लोग घंटों तक इंटरनेट पर बैठे रहते हैं। तो ये देखना है कि हमारा लक्ष्य हो बाबा की याद द्वारा कमाई करनी है, जमा करना है। इकोनॉमी करनी है, संकल्प बोल कर्म संबंध इकोनॉमी। जहां दो वाक्य से चल जाए, दस वाक्य न बोले, संकल्प पर भी ध्यान रखना है। क्योंकि मन को अभी तक हम लोगों ने इतना फ्रीडम दिया है, अभी हम मन को कहे शांत रहो वो मानता नहीं। दो मिनट शांत रहेगा फिर भागेगा इधर उधर उधर उधर। तो इसलिए देखना है व्यर्थ संकल्प न हो, व्यर्थ कर्म न हो। क्या है, कईयों को आदत होती है सारा दिन घर साफ करते रहे, सफाई। कईयों को आदत है बर्तन साफ करते रहे, एकदम चमकीला बनाना। आजकल तो पीतल के बर्तन नहीं होते हैं ज्यादा, परंतु जब पीतल के बर्तन होते हैं ना, इतना नींबू से घिस घिस करके सोने जैसा बना देते थे। खास दिवाली आती थी वो सफाई चलती थी। हमारे पास एक बहन थी, उसको वॉशिंग मशीन था, पर वॉशिंग मशीन में कपड़े के डालने के पहले खूब घिस घिस के सफाई करना, और प्रेस भी ऐसी करनी कि जरा भी एक भी क्रीज ना रहे। और एक माता थी फिजी में, वो उसके दो बच्चे थे और दो उसके ननंद के बच्चे थे। तो वहाँ तो क्या है कि बड़े शहरों में अच्छे पढ़ाई के साधन होते हैं, स्कूल कॉलेज आदि। तो ननंद के बच्चे भी, चार बच्चे, वो माता सवेरे से 4 बजे से उठती थी, पर घर काम, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, सबके बर्तन बांधने हैं, सबके कपड़े धुलाई करने हैं, सूखने डालने हैं, उतारने हैं, फिर घर सफाई करनी है, आंगन सफाई करनी है, क्योंकि वहां तो नौकर नहीं है, आंगन की सफाई करनी है, खाना पकाना है, ब्रेकफास्ट खाना, और तीन टाइम खाना पकता है, और फिर टाइम मिलता था तो अपने पति की शॉप में जाके उसको मदद करती थी। तो न मुरली का टाइम न मेडिटेशन के लिए टाइम। हम उसके घर में रही थी पर तो भी बैठती नहीं थी। तो क्या है कि कईयों को काम करना है करना है करना है करना है करना ही है, बांटने का ढंग नहीं। बच्चे यहां पढ़ते रहे, और हमारे पास लंदन में एक माता थे, उसको पढ़ाई का बहुत शौक था। तो वो क्या करती थी, उनको दो बच्चे थे और इंडियन थे, दो बच्चे थे, तो क्या करती थी, पति को कहती थी एक दिन तुम जाओ क्लास में, एक दिन मैं जाऊंगी। तो जिस दिन वो क्लास में जाएंगी, छोटे बच्चे को साथ में ले जाएंगे। पहले पहले तो प्रेम में डाल के ट्रेन में डाल जाके जाती थी, फिर उसने कार बाय की तो कोई ड्राइवर, कोई ब्राह्मण ड्राइवर को लेके जाती थी और कार सीख गए, ड्राइविंग सीख गए। तो समझो बांट दी उसने ड्यूटी पति में और अपने में। तो अल्टरनेट डे दोनों जाते थे क्लास में, फिर घर में गीता पाठशाला खोली। अभी उसकी लड़की तो एक सेंटर संभालती है, लड़का शादी किया और साथ में रहता है माँ के गीता पाठशाला में। तो इसी रीत से जिसका लक्ष्य है पढ़ाई का, वो पढ़ाई जरूर करेंगे, क्योंकि पढ़ाई नहीं तो योग नहीं तो धारणा सेवा भी नहीं। दूसरा, हमें वैराग्य चाहिए बेहद का, कि पुरानी दुनिया की आजकल मायावी चीजें कैसी है। मोबाइल 4G 5G टेलीविजन, कलर सेट, बिग स्क्रीन, नई नई कार, नए नए मोटर बाइक की वो, मकान, कपड़े, क्योंकि गृहस्थ में रहते हैं, शादी वगैरह में जाना पड़ता है, तो शौक होता है कि नए नए कपड़े पहने। फिर सोचना पड़ता है, फलाने फंक्शन में हम गई थी, फलाने लोग आए थे, फलाना पहना था, अब इस फंक्शन में क्या पहने। और हमारे हांगकांग की माताएं तो क्या करती है, हर फंक्शन में जाने के पहले हेयर ड्रेसर के पास जाना है, सैलून में जाकर बाल कटवाना है। और यहां भी देखो नवरात्रि में भाई बहने सब खूब सज धज के नाचते हैं, वो भी जाते हैं ब्यूटिशियन के पास या हेयर ड्रेसर के पास या टैटू कराने, जाते हैं, और पंजाब में तो शादी, मैं समझती हूँ गुजरात में तो शादी में नहीं करते हैं ना डांस, सासू ससुरा करते हैं अभी सब कर नाम शुरू कर दिया। पंजाब में तो सुना हमने के जो ससुर है वो भी डांस करता है, तो डांस का स्टेप सीखने जाते हैं। तो क्या है कि आजकल दुनिया में फैशन बढ़ती जाती है, रोज नई नई इन्वेंशन निकलती रहती है। यदि चाहिए चाहिए का लोभ होगा तो क्या होगा? लोभ है, पैसा भी चाहिए, जांच भी करनी चाहिए कहाँ सस्ता मिलता है क्या मिलता है। तो इसलिए समझो कि कई लोगों को अपना समय शक्ति व्यर्थ गंवाते हैं। तो वैराग्य नहीं तो त्याग नहीं, त्याग नहीं तो तपस्या नहीं, तपस्या नहीं तो सेवा नहीं, भाग्य नहीं बनेगा और विकर्म विनाश नहीं होंगे, विकारों को छोड़ नहीं सकेंगे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा हर सेकंड सफल हो, कुछ व्यर्थ ना हो। और बाबा से हमें सर्व संबंधों का अनुभव करना है। खास भट्टी में आप आए हो, यदि बाबा के साथ सर्व संबंध अभी तक अनुभव ना किए हो तो ये करना, माता पिता बंधु सखा टीचर गुरु साजन बालक तो क्या होगा कि लौकिक से ममत्व टूट जाए। नहीं तो लौकिक में ममत्व रहेगा, उनके ऊपर आधारित हो जाते हैं। बंबई में हमारे पास एक युगल था, बच्चा नहीं था, बहुत कोशिश की, हमने कहा अभी बाबा को बच्चा बनाओ, ये दुनियावी बच्चे क्या तुमको तुम्हारा उद्धार करेगा, जिंदे है तो भी नहीं देखते हैं आजकल बच्चे, शादी हुई ओम शांति गुड बाय, हम अपना घर संभालेंगे आप अपने को संभालो, और बूढ़ा हो गया बूढ़े घर में जाओ, वहां छोड़ के आते हैं। कई बच्चे तो बाहर ही छोड़ के चले जाते हैं, अंदर ऑफिस तक भी नहीं जाते हैं, वो क्या उद्धार करने वाले हैं, और उसके पीछे कितना समय शक्ति धन देना पड़ता है बच्चों के पीछे बड़ा करने में। तो इसलिए उस युगल को हमने कहा भी तुम शिव बाबा को बच्चा बनाओ, जो खरीदारी तुम अपने लिए करते हो बच्चे के लिए करो, तो रोज सब्जी भी ले आएंगी, अपना कपड़ा खरीदेंगी तो बाबा के लिए भी कुछ खरीद के लाएंगी, तो फिर संतुष्ट रहे। तो इसलिए अमृत वेला बहुत पावरफुल योग हो, अपनी कमाई करनी है, सारे दिन में कर्म योगी बनना, क्योंकि बाबा कहते हैं निरंतर योगी बनो, कम से कम 8 घंटा बाबा की याद में रहो। तो इसलिए ये अभ्यास करना है, बाबा की याद में निरंतर रहना है। तो जितनी साधना करेंगे तो शक्ति आएगी और सामना कर सकेंगे परिस्थितियों का, क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी ही आएंगी। दूसरा, हमको अभी अशरीरी अवस्था में रहना है, उसका अभ्यास करना है, अटेंशन रखना है, अपनी चेकिंग करनी है कि हम देहभान में तो नहीं आते, और दृढ़ता से अपने में परिवर्तन करना है। हमें मुरली से शक्ति लेनी है, ये हमारा सत्संग है, और अपने को ज्ञान का रंग लगाना है। तो फर्स्ट हमें कर्म बदलना है, बाद में बोल संकल्प, और बहाने नहीं देना है। कई लोग कहेंगे क्या फलाना देखो 30 साल से गुस्सा आता है, मैं तो अभी नहीं हूं ना, कौन लक्ष्मी नारायण बनाए। तो ऐसे करके अलबेले बन जाते हैं। पुरुषार्थ में हमारा दृढ़ संकल्प हो, साकारी दुनिया में तो रहना ही है, हमको तो संन्यास नहीं करना है, चले नहीं जाना है। बाबा कहते गृहस्थ तो व्यवहार में रहते पवित्र रहो, तो साकारी दुनिया में रहते भी अपने को सूक्ष्म वतनवासी अशरीरी अव्यक्त फरिश्ता समझकर चलना है। तो जितना उस फरिश्ता स्थिति में रहेंगे, नयनों में हमारे रूहानियत की आकर्षण होंगे और हमारे नयन द्वारा उनको 3 लोक का साक्षात्कार होगा। चेहरा हमारा पवित्रता और योग से चमकेगा, सुंदर और आकर्षित। गुलजार दादी ऑस्ट्रेलिया में लेक्चर दे रही थी पब्लिक में, उनके लेक्चर के बाद एक भाई हमारे पास आया, कहा शी इज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब वाइब्रेशन इन्हों के फरिश्तों के इतने सुंदर होते हैं जो आकर्षित करते हैं। बोल मीठा, अमूल्य ज्ञान रत्नों से औरों की झोली भरेंगे। फरिश्तों को कहते हैं एक से सर्व संबंध, औरों से रिश्ता नहीं। फरिश्ता माना औरों से रिश्ता नहीं, साथ में रहो, लौकिक को अलौकिक बना। फरिश्ते शक्ति गुण और वरदानों की वर्षा करेंगे। उनकी कई स्टोरी है फरिश्तों की। जैसे भूतों की भी स्टोरी होती है, किसी किसी को भूतों का अनुभव होता है। तो एक माता मर गई, छोटे छोटे बच्चे थे, रोज रात को जो बर्तन पड़े होते थे ना वॉश बेसिन में, रोज आकर साफ करके रख जाती थी। एक बच्चा अपना अनुभव सुनाता था, और उसकी माँ के साथ जा रहा था, तो वो सिंक होल होता है ना सुएज का, ढक्कन नहीं था, बच्चा गिर गया। एक इंच का फर्क था, नहीं तो अंदर जाता था। तो उसने देखा कि कोई फरिश्ते ने आकर उसको ठहरा दिया। उसने माँ को पूछा, माँ तुमने देखा? माँ कहे, मैंने तो नहीं देखा। मतलब ऐसे भी कईयों को अनुभव होता कि फरिश्ता आकर हमारी रक्षा करते हैं। दाता वरदाता के रूप में उनका गायन है और पूजन भी है। आजकल तो सब फरिश्तों की फोटोज, मूर्तियां आदि आदि घर में रखते हैं। हमारे शास्त्रों में कहते हैं ना, नुमाशाम परियां, हम कहते थे परियां, परियां चक्कर लगाती है। सर्व आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में वो शक्तिवान है। सदैव खुशी में नाचते रहेंगे, उस अवस्था में रहेंगे, अशरीरी अवस्था में खुशी, गम का नाम निशान नहीं। बाबा हमें इतना खजाना देते हैं, जब ये स्मृति में रहे कि बाबा के हम बच्चे हैं, बाबा से हमें इतना खजाना मिलता है, तो खुशी ही खुशी रहेंगे। एक रस स्थिति रहेगी। कर्म करते भी धरती से परे। फरिश्तों को दो पंख दिखाते हैं, और फरिश्ते यूजुअली बच्चे दिखाते हैं, अर्थात वो बच्चे जैसे निर्दोष और पवित्र रहते हैं। ज्ञान योग, उमंग उत्साह के पंख होते हैं उन्हें। अवतरित आत्मा लोग उनको समझते हैं, आकर धर्म स्थापना का कर्तव्य करते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? दैवी धर्म की स्थापना, पति से पावन बनना है और उनको पावन बनाना है, बाप का परिचय देना है। शक्ति अवतार, डबल लाइट, सदा श्रीमत पर चलते हैं। मेन बात है, बाबा हमेशा कहते हैं श्रीमत पर चलो। आज रोज कहते हैं श्रीमत पर चलो, मनमत नहीं, परमत नहीं। जीवन अमानत है भगवान के, अपनापन नहीं। तन मन धन सब बाबा का समर्पित। मेरा कुछ हो तो मुझे चिंता हो ना, मेरा तन न मेरा मन न मेरा धन। सर्व त्यागे, पुराने भाव स्वभाव संस्कार का अंश मात्र भी न रहे। ये लक्ष्य है ना। और मेरा नहीं बोलना है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरी आदत ही ऐसी है, नहीं। अभी पुराने शूद्र जन्म से हम मर चुके, हम ब्राह्मण बन चुके, तो ब्राह्मणों के संस्कार बाबा के संस्कार। व्यक्ति वस्तु वैभव का कोई आकर्षण नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान, तो कोई कमजोरी की बात नहीं। क्या करें, कैसे करें, करना तो नहीं था, हो गया, ये कमजोरी की बात है। इसने ऐसा किया, गुस्सा नहीं आएगा क्या? कोई भी बात मुश्किल नहीं। क्या है कि ज्ञान की मंजिल ऊंची है। संपूर्ण निर्विकारी बनना, ग्रह ग्रस में रहकर, तो कई तो छोड़ गए ज्ञान का, हमारे से तो नहीं हो सकता। मुश्किल बहुत है। और कोई धीरे धीरे चलते हैं, थोड़ा समय चलते हैं, फिर ओम शांति। कोई प्रश्न नहीं, क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि ज्ञानी है। ज्ञानी तो आत्मा के पास सब जवाब है, क्योंकि समस्या आएंगे, परंतु उस समस्या का समाधान कैसे करना, उसका जवाब बाबा दे देते हैं हम बच्चे को। और योग अग्नि से कमजोरियां जलाकर खत्म कर दी। तो हमें अभ्यास करना है उपराम रहने का। और पुरानी जो फीलिंग आती थी वो ना आवे। नहीं तो हम कहते जैसे के साथ वैसा, ऐसा नहीं। हरेक के लिए कल्याण की भावना हो। हरेक को मदद करना है, हरेक से प्यार। बाबा कहते हैं ना, निंदा हमारी जो करे वो हमारा मित्र, गाली देने वाले को गले लगाओ। ये प्रैक्टिकल में होना चाहिए। और हमेशा हिम्मत, उमंग, उल्लास रहे। और हमें ये भावना रहे कि ये सब हमारे भाई बहन हैं। जब हमारी ये भावना होंगी ना, तो वो लोग भी समझेंगे कि ये हमारी बहन जी है। दादी प्रकाशमणि ऑस्ट्रेलिया में आई थी, प्रवचन के बाद एक जन आकर कहता है, हमें ये फील होता है ये हमारी दादी है। तो पब्लिक में एक घंटे में उन्होंने ऐसी भाषण दी। अपना मन, बुद्धि, संस्कार सब हतन मन धन समर्पित किया और शरीर भी समर्पित कर दिया। तो न शरीर में ममत्व, न मित्र संबंधी में ममत्व, न धन दौलत मकान में। कईयों का, टीचर बहनों का भी सेंटर में ममत्व हो जाता, घर वालों से तोड़ा, टीचर से ममत्व हो जाता, या टीचर से नहीं तो अपने मकान हमने इतना अच्छा बनाया, अभी दादी ऐसे क्यों कहती है कि वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ। तो फरिश्ते की बुद्धि सिर्फ भौतिक लेवल पर नहीं रहती है, वो हमेशा उड़ते रहते हैं। पांच तत्व उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो वो सर्वगुण संपन्न है, नॉलेजफुल है, फेथफुल है, पावरफुल है, सक्सेसफुल है। तो समय पर शीतला बनना है, समय पर काली बनना। माया, मायावी लोगों के सामने काली बनना। कर्म करते करते शरीर में आओ। जैसा भी कर्म पूरा हुआ, सूक्ष्म वतन में चले जाओ। और एक सेकंड लगना चाहिए। अभी ये प्रैक्टिस करनी है, एक सेकंड में मन को ऑर्डर करो, यहां से सूक्ष्मवतन, सूक्ष्मवतन से निराकार दुनिया, क्योंकि लास्ट पेपर यही होगा। उसमें फेल हुए, कल्प कल्प फेल। और हमारी दिनचर्या बहुत, जैसे बाबा ने बताई है ना, ऐसी होनी चाहिए। अमृत वेला, मुरली, कर्मयोगी जीवन, अपने पर अटेंशन, ज्ञान का मनन मंथन चिंतन करना, और रात को सोने के पहले अपना चार्ट देखना कि सारा दिन की हमारी दिनचर्या कैसी रही, ज्ञान का कौन सा पॉइंट मंथन किया, योग कैसा रहा, निरंतर रहा, पावरफुल रहा, मीडियम रहा, हल्का रहा, नहीं किसी को दुख दिया, किसी को सुख दिया। क्योंकि बाबा कहते दुख ना दो, दुख लो, परंतु सुख दो, सेवा करो, किसी को मन वचन कर्म से सहयोग दो। तो रात को बाबा की याद में सो जाएंगे तो सवेरे बाबा की याद में उठेंगे। तो इसलिए अपनी दिनचर्या पर ध्यान रखना। ओम शांति। दो मिनट बाबा की याद में बैठे।
सबसे पहले इन पे भगवान की नजर पड़ी, सबसे पहले इन पे भगवान की नजर पड़ी, मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीद बड़ी। जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं, ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। कहते हैं जन्नत जिसे वो जमी पर आएगा। नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के छलकते इशारे हैं। ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं,